हरे कृष्णा, अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है कि जब भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है, तो फिर प्रार्थना करने से क्या लाभ? बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको हम बहुत ही डीपली समझने का प्रयास करते हैं कि देखो, नसीब लिखने वाले भी तो भगवान ही है ना, और नसीब तो हमारे कर्मों से ही बनता है। जैसे आज एक व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता, ऑफिस में जाता है और एक साइन करके करोड़ों रुपए कमा लेता है, और एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और अक्सर भरपेट खाना भी नहीं मिलता उसे, क्यों? इसका जवाब है पहले के किए हुए कर्म, मतलब हमारे पिछले कर्मों से हमारा आज का भाग्य बना है और हमारे आज के कर्मों से कल का भाग्य बनेगा। अब हमारे नसीब में जितने भी दुख हैं, उनमें कुल मिलाकर चार दुख मुख्य हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी पैदा होना, बूढ़ा होना, बीमार होना और मर जाना। ये दुख हर एक व्यक्ति को आते हैं। और अगर आपका हो कि अगला जन्म किसने देखा है, तो चलो ठीक है, इस जन्म की बात करते हैं। इस जन्म में आपके कई कष्ट हो सकते हैं, परंतु सबसे बड़ा कष्ट है मृत्यु का। रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, बड़े धन, बहुत सारा धन उन्होंने अर्जित कर लिया, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा वैभव, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो गया, परंतु इनमें से कोई भी मृत्यु से नहीं छूट सका। तो अब आपके प्रश्न को रिफाइंड फॉर्म में अगर हम बोलें, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब मृत्यु आनी ही है, तो भक्ति या प्रार्थना करने से क्या लाभ? पता है, जब एक बिल्ली अपने दांतों से चूहे को पकड़ती है, तो उसे कच्चा चबा डालती है, पर जब वही दांतों से अपने बच्चे को थामती है, तो बड़े ही प्रेम से उसे सुरक्षित स्थान पर लेके जाती है। उसी प्रकार जब काल के मर्दन करने वाले भगवान को कोई भजता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो उसी मृत्यु जिसके बाद वो नरक की यातनाएं भुगतने वाला होता है, उसके वो सारे कष्ट परम धाम की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। यही तो प्रार्थना का असर है। दुख तो सबके जीवन में आते हैं, परंतु ये दुख भक्तों के जीवन को और भी आनंदित कर देते हैं, क्योंकि इन दुखों के कारण कृष्ण हमारे और भी निकट आ जाते हैं, हर सांस में उनका स्मरण होने लगता है। यही तो प्रार्थना की शक्ति है कि जब प्रार्थना पूरी हो तब हो, पर जिस समय हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, कभी विचार किया है कि उस समय हम कृष्ण के कितने निकट होते हैं? हम हृदय से ये रियलाइज कर रहे होते हैं कि वो मेरी बात सुन रहा है, वो अवश्य मेरे कष्ट का समाधान करेगा। हमारा विश्वास उस समय करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। इससे ज्यादा और क्या लाभ हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में चैप्टर 7 वर्स नंबर 16 में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ति मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं, आर्त, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अर्थात भगवान ने ये बता दिया कि चाहे किसी भी वजह से तुम मेरे पास आते हो, धन प्राप्त करने के लिए आते हो, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए आते हो, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हो, या जिज्ञासु बनकर आते हो, तुम साधारण नहीं हो सकते। तुमने मुझे चुना है, मेरी शरण में आए हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, तो तुम सुकृतिन हो, तुम बहुत रेयर। वास्तव में जिसके पास बहुत बहुत पुण्यों की पूंजी होती है ना, वही भगवान की शरण में जा सकता है। जात भगवान ने कहा अपिचे सुदुराचारो भजते मामन, जाने के लिए भगवान ने किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं किया है, मगर आप कितना भी करो ना उसकी इच्छा ही नहीं होती है। जिसके पास बहुत सारी सुकृति नहीं होती है ना उसकी इच्छा ही नहीं होती, लेकिन यदि किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य और कृपा प्राप्त हो जाती है तो हम जैसे अधम जिन्होंने पिछले जन्मों में कोई पुण्य कर्म नहीं किया वो भी भगवान की भक्ति करना शुरू हो जाते हैं। वास्तव में एक बात फिर भी समझनी है कि प्रार्थना कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। एक भक्त को ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान को मुझसे अधिक फिक्र है और भगवान की प्लानिंग्स मेरे ख्वाबों से ज्यादा बेहतर है। इसलिए सदैव भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण जिसमें आपकी खुशी वो वैसा खींचिए। तो अब भगवान पे जब छोड़ दिया तो समझो वो कभी भी आपका बुरा नहीं, वैसे भी भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन जब हम भगवान की शरण में आ जाते ना, जैसे एक माँ के चार बच्चे हों, तीन बच्चे ना वो अपनी चॉइस का कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी चीज उनको चाहिए होती है अपनी चॉइस से हर चीज लेकर आते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा है उसको पता है माँ को कि इसकी अपनी कोई प्लानिंग ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या खरीदना है, उसकी हर एक चीज की माँ को कितनी फिक्र होती है। उसी तरह से जो भक्त भगवान के सरेंडर हो जाता है ना, भगवान भी उसी माँ की तरह उसकी सुरक्षा करते हैं। एक एक वस्तु एक एक चीज आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भगवान तो आपके मांगने से पहले ही आपको वो हर वस्तु दे देते हैं। भगवान कहते हैं 9.22 में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, उसकी समस्त कमी को मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी सुरक्षा करता हूँ। इसलिए जब हम भगवान की शरण में जाते हैं निस्वार्थ भाव से और पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए। भगवान सच्चित आनंद है, भगवान के पास बुद्धि है, भगवान चैतन्य है, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, भगवान हमारे हर महसूस को जो हम महसूस कर रहे होते हैं हर उस चीज को, हर इस दुख को, हर इस खुशी को वो हमारे साथ साथ महसूस करते हैं। तो भगवान स्वयं ही समस्त कष्टों का निवारण कर लेते हैं। हमें क्या करना है, केवल भगवान की शरण में जाना है। और जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो उसी समय हमारे पूर्व जन्मों के समस्त अपराधों का नाश हो जाता है। शास्त्र कहता है, नामनो हि यावति शक्ति पाप नरहरणे हरि तावत् कर्तुं न शक्तोऽपि पातकम् पातकी नरः। अर्थात भगवान के पवित्र नाम का यदि हम एक बार भी हृदय से उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक उच्चारण मात्र से हमारे उतने जन्मों के अपराध नष्ट हो सकते हैं, उतने अपराध नष्ट हो सकते हैं जितने अपराध के हम कर भी नहीं सकते। अर्थात विधाता ने जो भाग्य लिखा था वो तो उसी समय बदल जाता है जब हम पहली बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हमें जो सुख और दुख मिलते हैं वो तो हमारे कर्मों के कारण मिलते हैं, परंतु जो कृष्ण की शरण में आ जाते हैं उनका भाग्य कृष्ण स्वयं लिखते हैं। भगवान अपने और अपने भक्तों के दरमियान किसी विधाता को आने की इजाजत नहीं देते। भक्त के जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वो एक तरह से कृष्ण की प्लानिंग्स होती है कि कैसे मैं इस भक्त को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित करूं। इसलिए भगवान भक्त के भविष्य को अपनी कृपा से स्वयं ही प्लान करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमारी प्रार्थना में उतना ही बल आता है जितना हमारा सरेंडर लेवल होता है, और भगवान उसी के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके हमें रिजल्ट देते हैं। कृष्ण सुप्रीम अथॉरिटी है, समस्त नियमों को बनाने वाले तो वही है ना, इसलिए वो जब चाहे जैसे चाहे इन नियमों को बदल सकते हैं। जैसे नियम है कि जो व्यक्ति शराब पिएगा, मांसाहार करेगा, अपराध करेगा, उसको नरक में जाना पड़ेगा, परंतु जब वो कृष्ण की शरण में आ जाता है तो वो भगवान के धाम में चला जाता है। कृष्ण की कृपा हुई तो जगाई और मदाई, जिन्होंने करोड़ अपराध किए, असंख्य अपराध किए, वो भी भगवान की कृपा से कौलोक में प्राप्त हो गए। नियम ये है कि एक मनुष्य जब एक जीव जब मनुष्य रूप में आता है, जब दीक्षा लेता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, जब साधन तपस्या गीता भागवतम को पढ़ता है, तभी वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। परंतु भगवान की इच्छा से एक हाथी गजेंद्र को भी मुक्ति मिल गई। उसी प्रकार नियम ये है कि जो बालकों की हत्या करेगा उसे भयानक नरक में जाना पड़ेगा, परंतु केवल कृष्ण के शरण में आने पर कृष्ण ने उस पुत्ना का उद्धार किया जिसने 7 दिन में न जाने कितने बच्चों की हत्या कर दी थी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वैसे तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 5.15 में, नादत्ति कश्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु। देखो अर्जुन, भगवान ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना ही पुण्यों को। परंतु वही भगवान फिर आगे कहते हैं 9.30 में, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वसमन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो, यदि उसने करोड़ों करोड़ों अपराध भी किए होंगे, दुराचारियों में यदि वो सबसे महान दुराचारी भी होगा, भजते माम अनन्य भाग, यदि वो मेरी शरण में आता है, मेरे नाम का सुमिरन करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, तो साधुरेव समन्तव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि वो सत्सारों को छोड़कर मेरी भक्ति में कायम रह रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पुराने जन्मों के चाहे कितने ही अपराध क्यों ना हो, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, कृष्ण को सरेंडर करते हैं, तो उन समस्त अपराधों का फल नहीं भुगतना पड़ता। फिर हमारा जीवन भगवान की कृपा के कारण, वो समस्त दुख आते हैं, दुख खत्म नहीं होते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम डिवोटी बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं बचेगा, लेकिन वो दुख हमारे कृष्ण प्रेम को बढ़ाने का साधन बन जाते हैं। जैसे दुख तो द्रौपदी को भी आया है ना, ये सबसे बड़ा दुख है एक स्त्री के लिए कि उसको बड़ी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस दुख के कारण कृष्ण उसके कितने निकट आए। कृष्ण ने अपने आप को साड़ी का रूप धारण कर दिया और उसे उसकी लाज बच जाई। दुख तो पांडवों के जीवन में एक एक पद पे दुख आए थे, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के साथ थे, कृष्ण का साथ होने के कारण कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम में, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 25, विपदः संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भावतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो ये विपत्ताएं, जो कष्ट मुझे आ रहे हैं, मेरे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, वो सर्वत्र कष्ट शाश्वत रूप से तत्र तत्र, वो सारे कष्ट कंटिन्यूअस मेरे जीवन में आते रहे आते रहे आते रहे। मैं आपसे ये प्रार्थना ही नहीं कर रही हूँ कि मेरे कष्टों का निवारण करो, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां फिर आए। क्यों आए? क्योंकि वे कहते हैं भवतो दर्शनम यत् स्यात्, क्योंकि इन विपत्ताओं के कारण जब जब विपत्ता आती थी तब तब हम इतना प्रेम से, इतना हृदय से आपको पुकारते थे कि आप उसी क्षण हमारे कष्ट निवारण करने के लिए हमारे पास आ जाते थे, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर पाते थे। और अत्यंत ही सुंदर बात कहती है यहाँ पर, अगर भगवान कहे कि चलो ठीक है, आपने यदि मुझे पुकारा और मैं उसी समय दर्शन दे देता हूँ तो क्या फायदा, उससे क्या होता है? हम जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान उसी समय प्रकट होते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, तो इससे क्या फायदा होता है? कुंती महारानी कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। और एक बार जब कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो फिर कभी भी जन्म मृत्यु का चक्कर बार बार भुगतना नहीं पड़ा, अपुनर्भव दर्शनम, तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ता। वास्तव में भक्तों, ये केवल प्रार्थना ही तो है कि हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। और इस कलयुग में केवल एक ही प्रार्थना काफी है, बस एक ही, एको मंत्रस्तत्तस्य नामानि यानि। शास्त्र कहता है सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के अतिरिक्त और कोई प्रार्थना? अब देखो, हर एक प्रार्थना जो है उसका एक अलग मीनिंग होगा ना, जैसे आप कोई भी प्रार्थना करोगे उसका एक अलग मतलब होगा। लेकिन इस महामंत्र में खाली भगवान के नाम है, लेकिन ये महामंत्र क्या है? शास्त्र कहता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये नाम जो है वो साक्षात भगवान का विग्रह है, यानी भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अब चैतन्य है अर्थात ये महामंत्र जो है वो चैतन्य है। चैतन्य का क्या मतलब है? कि उसको खबर है कि आपको क्या चाहिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप महामंत्र का जप करते हो कि भगवान के सामने बैठकर महामंत्र का जप भी करो, बस आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेटा चाहिए तो भी महामंत्र का जप करो, भगवान को पता है कि तुम बेटा प्राप्त करने के लिए मेरे साथ मेरा जप कर रहे हो। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तब भी आपको महामंत्र का ही जप करना, चैतन्य रस विग्रह। देखो, संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना श्लोक के अंदर, उस पर हमें फोकस करना पड़ता है कि ये महामंत्र जो है उसको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप खाली उसको जपो। यानी कि जैसे आप एक टैबलेट खाते हो ना, जब पेन किलर आप खाते हो तो पेन किलर को ये नहीं बताना होता है कि देखो पेन किलर अभी मेरे पाँव में दर्द होता है, आप जाके मेरे पाँव को ठीक करो, या मेरे बाजू में दर्द हो रहा है आप उसको जाके ठीक करो, या मेरे कहीं और जगह पे दर्द हो रहा है सर में, उसको ऐसे नहीं बोलोगे। उसको क्या करोगे? खाली आप खाओगे बस, उसको खुद ही खबर पड़ जाएगी कि कहाँ पर पेन हो रहा है, मुझे वहां पर जाके पेन को किल करना। उसी तरह से जब एक भौतिक वस्तु के अंदर इतना पावर होता है कि वो खुद ही जज करके उस दुख को दूर कर सकती, तो क्या भगवान के नाम में हमें इतना इतना विश्वास नहीं है कि वो भगवान का नाम वो खुद से ही जानता है? चैतन्य रस विग्रह, वो पूर्ण शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, इटर्नल है। भगवान का नाम जो है इन भौतिक चीजों से बंधा हुआ नहीं है, प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ नहीं है, वो इटर्नल है, उसे
पता है कि आपको क्या चाहिए और उसे ये भी पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। भगवान देंगे अवश्य। अगर हम किसी भौतिक वस्तु से भी भगवान के पास जाएंगे तो भगवान कभी भी निराश नहीं करते। भगवान करके दिखा ध्रुव भगत, हम देखते हैं उन्होंने तपस्या क्यों की थी, राज्य प्राप्त करने के लिए। भगवान प्रकट हो गए और भगवान से कहे, ध्रुव ने कहा कि मेरी कितनी अज्ञानता है कि मैं आपकी प्रार्थना कर रहा था, आप मुझे आपकी सानिध्य प्राप्त हो सकता, मुझे मैं आपका प्रेम प्राप्त हो सकता था, मगर मैंने इतनी भौतिक वस्तु के लिए आपकी प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, नहीं, आपने जिस चीज के लिए प्रार्थना की है वो तो मैं तुम्हें दूंगा जरूर। तब गुरु ने कहा, स्वामी कृतार्थम वरम नवांचे, आपको प्राप्त करके अब मैं इतना कृतार्थ हो गया हूँ कि अब भौतिक वस्तुओं की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, अब मुझे मत दो। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, तुमने जिस चीज के लिए तपस्या की थी वो तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा, फिर उसके बाद भी मैं तुम्हें एक ऐसी जगह प्रदान करूंगा जिसका कभी क्षय नहीं होगा। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों को देते हैं, इसलिए हमें भगवान के, लेकिन भगवान को ध्रुव ने भी ये नहीं कहा जाकर डायरेक्ट से, हमें सीखना चाहिए ना शास्त्र से कि भगवान मुझे राज दो, भगवान मुझे राज दो। भगवान उसने भी मंत्र, जो उसके गुरु महाराज ने उसको मंत्र बताया था, उसी मंत्र को जब उसने उच्चारण किया 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 किया, एटलीस्ट भगवान आ गया और भगवान ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, मंत्र को जप करना चाहिए। हमें मंत्र के ऊपर पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मंत्र मैं जप रहा हूँ उसके अंदर इतना पावर है कि वो भगवान तक मेरी आवाज पहुंचा सकता है। आपके शब्दों में पावर नहीं होता है, क्योंकि हम देखो अपवित्र है ना, हम इस भौतिक शब्द जो होते हैं वो भौतिक होते हैं, लेकिन मंत्र जो होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। इसे आध्यात्मिक मंत्रों के द्वारा जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो अवश्य कल्याण होता है। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे बोल।